तस्यै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्तिषे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकात्रया जुहाव पुत्रेति तन्मेतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं मां शरणान्तिके। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद सुष्मद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता है। तत्पश्चात हमारे वैष्णवगण, आदरणीय सज्जन महोदयगण, माताएं बहनें और बेटियां यथाजोग्य सबका अभिवादन करते हुए मैं आज की कथा पुनः आरंभ कर रहा हूं। एक बारात जाने वाली है, वो मान लीजिए यहाँ से लंबासा से सुबह में बारात जाने वाली थी। शायद ही तय हो चुकी थी वरयात्री शाम को 8 बजे निकलने थे, जो रात भर चल करके बोट के द्वारा सवेरे सुबह में पहुंच जाएंगे और शुभ लग्न में शादी होगी। इसलिए 8 बजे रात में वर और वर यात्री सभी प्रस्तुत होकर के उस बोट में आए। बोट वो हाथ से खेने वाली थी। आजकल करके बोट इंजन से नहीं बल्कि उसमें पतवार और डांड से चार आदमी इधर चार आदमी इधर बैठेंगे और ऊपर में छजी सजाई हुई नौका थी, उसमें सभी लोगों ने प्रवेश किया भीतर में और उसमें जो चलाने वाले थे नाविक उनके दल के नेता को कहा ठीक 8 बजे शुभ मुहूर्त है यहाँ से चल देना है। और वो सब वरयात्री और वर सब नौका के अंदर में बैठ करके कोई ताश खेलने लगा। कोई बाई जी भी थी, तबला ठनक रहा था और लोग कुछ गांजा भांग जैसे यहाँ नशीली क्या चीज होती है जगोना जैसा कुछ ले लिया मीठा मीठा। बड़े आनंद के साथ में यात्रा करने लगे। नाव के नेता पतवार जो चलाने वाला था वो आया, बोला जी देखिए बहुत परिश्रम है, सारी रात नौका चलानी पड़ेगी, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा गांजा और भांग दे दें जिसे ऐसे पी करके हम लोग रात भर चलाएंगे, नहीं तो हम लोग चला नहीं सकते इतना। अच्छा ठीक है, उन्होंने उनको दे दिया, उन्होंने भांग लगाया और पीस करके पिया, और इसके बाद में गांजा भी दम चिलम पर ले करके उन्होंने लगाया और जुट गए वो नौका चलाने में। अब बड़े जोर से नौका चलने लगी और ये आनंद में मशगूल होकर के भाई जी का नृत्य और गान सुन रहे हैं, कोई पासा खेल रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, बड़े आनंद के साथ में खाते पीते मौज करते हुए बारात रवाना हुई। जब सवेरा हुआ तो इन लोगों ने सोचा कि अब तो हम लोगों को सुबह पहुंच गए होंगे, अब तो उतरना ही होगा। तो बर के पिताजी नौका के ऊपर में आए और देखा जी हम लोग कहाँ पहुंचे हैं, सुबह के किस जगह घाट पर पहुंचे हैं कि नहीं। उन्होंने देखा कि जहां से हम चले थे अभी तो हम वहीं हैं, वहीं नारियल का पेड़ है और वही घाट जहां पर हम लोग थे, नौका भी चल रही है। उन्हें नौका, अरे तुम लोगों ने नौका चलाया नहीं, नौका तो उसी घाट पर है। हम लोग तो पसीने से तरबर हो रहे हैं, रात में कहीं नहीं हम लोगों ने बंद किया, नौका भी बड़ी देर से चल रही, नहीं तो ये तो वही गांव है, वही हमारा नारियल का पेड़ है, वही घाट है हमारा, वहीं से घर दिखाई पड़ता है। तुम लोग क्या किया, ये तो सब चौपट हो गया, हमारा विवाह की साइट भी नष्ट होगी, विवाह भी बंद हो जाएगा, सब गड़बड़ हो गया। उन्होंने देखा जी क्या हुई, उन्होंने लंगर नहीं उठाया, लंगर होता है ना, लंगर उठाया नहीं और नौका भी चल रही है, घूम रही है और वो चल नहीं रही, नौका भी चल रही है किंतु तस से मस इधर से उधर नहीं हो रही, एक इंच भी नहीं बढ़ी। विवाह पंड हो गया, फिर किसी प्रकार से टेलीग्राम दिया गया अभी इस बार उस दिन का साइट बंद करके अब फिर दूसरे दिन के लिए विवाह रखा। तात्पर्य इसका यह, भजन करने के लिए हम साधन भजन खूब करते हैं, सवेरे बैठ करके ठाकुर जी की पूजा आरती सब कर लेते हैं, कुछ नाम भी कर लेते हैं, रामायण का प्रवचन भी कर लेते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी, सुत सिद्धांत यह गुरुगारी भजिय राम सब काज विचारी, सब कर लेते हैं। किंतु संसार के प्रति हमारी जो आसक्ति जहां थी वहीं रही, संसार के प्रति हमारी आसक्ति, ये लंगर नहीं उठाया लंगर, ये यदि उठा करके संसार से आसक्ति को हटा देते, मैं और मोर तोर तय माया ये हटा लेते जरा, और फिर भगवान में वो मैं, वो हमारे प्रभु हैं, मैं उनका दास हूं, और भगवान के चरणों में प्रीति रहे, अनुपायनी भक्ति रहे, तो थोड़ा सा भजन करने से भी इतना भजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा कार्य सिद्धि हो जाएगा और हम देखेंगे सहज ही माया को पार करके सदा के लिए प्रभु के धाम में पहुंच कर उनकी नित्य सेवा में प्रवेश कर सकते हैं। आप समझ रहे होंगे ये आसक्ति क्या की है। जब तक ये आसक्ति नहीं हटाएंगे संसार से, ये मेरा है यही खूब अच्छा रहे, बैठे फलते फूलते रहें, जरा नाती का मुख देख लेता या देख लेती बहुत अच्छा, हरे कृष्ण हरे राम ठाकुर जी के घर में गए पूजा किया, अभी ऑफिस में जाना है, आज विलंब हो गया है, जल्दी से जल्दी किया, मन तो वहां और इधर अर्चन करके जल्दी से भागे। इसलिए ऐसे भजन से नहीं होगा, शुद्ध रूप में परमार्थी गुरु हो और हमारी लगन हो जो भगवान को पाना है, एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द लाइफ देयर मस्ट बी, जब तक ये एम ऑब्जेक्ट लाइफ का ये जो भगवान का प्रेम हमको चाहिए, भगवान के चरणों में अनुपायनी भक्ति चाहिए और उसके लिए हम सदगुरु से लेकर के संबंध भगवान से काम करके जब तक नहीं करेंगे, और ये आसक्ति की हटा करके ऊपर नौका में रख लेंगे, माने भगवान के चरणों में रख लेंगे, तब थोड़ा भी भजन होगा तो हो जाएगा। श्रीमद् भागवत में एक ऐसा प्रसंग है कि साधक लोग भी बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच गए, कहीं आसक्ति रूपी लंगर को भी हटा लिया है और हटा करके भजन करने लगे, घर बार छोड़ दिया, स्त्री पुत्र परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ करके अब वन में एकांत स्थिति में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। किंतु किसी प्रकार से वो लंगर फिर गिर गया पानी में, अतः तो पुनः किसी चीज में घर में छोड़ करके आए हैं सबको, और न जाने कहां एक कुत्ते पर लग गया प्रेम, और बस उनका तीन जन्म खराब हो गया। कैसे इसको श्रीमद् भागवत से समझिए, भजन करने से ही नहीं होगा, आसक्ति को हटाइए, भगवान में वो आसक्ति दीजिए, संबंध के साथ में भजन कीजिए, तब तो होगा। श्रीमद् भागवत में यह प्रसंग थोड़े से संक्षेप में शुभानंद ब्रह्मचारी जी धीरे धीरे बतलाइए, संक्षेप में बतलाएं 15 मिनट अधिक से अधिक।
ॐ अज्ञात निरम्भम् यणाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
धर्मानुकम्पमानं शरणं। और देवी कैसे उनकी रक्षा कर रही हैं, उनसे क्षमा मांग रही हैं, ये देखिए, यही दुर्गा जी हैं, भक्तों का कितना आदर करती हैं। इसलिए देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को प्राप्त करते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों को ही प्राप्त होते हैं, और हमारा पूजा करने वाले हमारे परम धाम को प्राप्त करते हैं। जब गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमम्, फिर वहां से वो लौटते नहीं है। इसलिए हम सोमवार करें चाहे रविवार करें चाहे और देवता देवियों की उपासना करें, उससे इसलिए व्रतों में यदि हरिवासर करें, हरिवासर माने एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी इत्यादि का व्रत यदि किया जाए तो अपने आप शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। सोमवार उन्हीं के लिए होता, वो भी प्रसन्न हो जाएंगे, दुर्गा जी प्रसन्न हो जाएंगे, सारे देवता लोग प्रसन्न हो जाएंगे। और यदि अप्रसन्न भी होंगे तो कुछ नहीं कर सकते, स्वयं भगवान का चक्र उनकी रक्षा करता है। दुर्वासा और अम्बरीश की कथा आप लोगों को याद होगी। तो इस तरह से एकांतिक रूप में भगवान का भजन करेंगे और उन पर छोड़ देंगे, अपने जीवन के परवाह नहीं करेंगे, भगवान किस प्रकार से उनकी रक्षा करते हैं। यह रघुगण राजा उस समय भारत के सम्राट थे, वो जा रहे थे कपिल देव के आश्रम में कुछ ज्ञान तत्व के लिए। भरत जी मिल गए और पालकी से उतरे, उसने पूछा आप कौन हैं, तो वही आपका वंश का बहुत पुराना चक्रवर्ती महाराज भरत हूं जिसके नाम पर भारत पड़ा है। अरे आप भरत हमारे पूर्वजों में से, मैं तो उनकी गाथा सुनता हूं, मैं वही हूं। और फिर जो हमारे श्रीमान ब्रह्मचारी जी ने तत्व तो सब सुनाया वो उनको सुनाया, इसके बाद में उनको भी वैराग्य हो गया संसार से आसक्ति छोड़ करके भगवान का भजन करने के लिए। सुनने का फल क्या है, एक समय महाराज विक्रमादित्य के दरबार में एक कपालिक आया, कपालिक समझते हैं नंग धड़ंग मत्तान किए हुए और एक मरे हुए खोपड़ी को साथ में लेते हुए आया और महाराज जी के दरबार में पहुंच करके कहा, मैं यहाँ पर बड़े सुनते हैं बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, तो ये तो बतलाएं ये खोपड़ी जिसकी है वो खोपड़ी वाला जो था वो बुद्धिमान था या मूर्ख था। वहां पर आठ तो नवरत्न थे, एक कालिदास नहीं थे और बाकी सब लोग थे, महाराज भी थे,
कोई उत्तर नहीं दे सका। कहे यही नवरत्नों की सभा है, मूर्खों की सभा। वो जा रहा था, इतने में कालिदास जी आए। महाराज जी ने कहा जी महाराज थोड़ा सा दूर और ठहरे जाइए, जरा इनसे पूछ लें, यदि नहीं जवाब देंगे तो आप जाएंगे। इतने में कालिदास आए, कालिदास से पूछा गया, पूछा उन्होंने एक नारियल की सीख होती है, नारियल के पत्तों की सीख ली और इसमें लगाया तो देखा जो उधर में निकल गया। आप लोग समझ गए, इधर लगाया इधर निकल गया, तो माने क्या? ये बड़ा वज्र मूर्ख था, जो कुछ सुनता था इधर से और इधर से निकाल देता था। यदि यह डंग ये सीख यदि भीतर चली जाती तो इसका मतलब है वो सुनकर पर गौर करके विचार करके ग्रहण करके तब काम को करता, तो ये बुद्धिमान होता। तो ये वज्र मूर्ख था, सुन करके वो खाली एवं मत। बहुत सुंदर, मैं इस प्रश्न से मैं बहुत प्रभावित हुआ। आप लोगों को इतनी हम लोग कथाएं सुन आ रहे हैं, पैसे आप ही में भी पैसे का प्रश्न नहीं रखते। हम चाहते क्या है हमारी कथाएं इस काम से इस काम से निकल न जाए। बहुत परिश्रम करके देखिए, वर्षा हो रही है, सब लोग आ रहे हैं, हमारी बातें इतनी दूर से भारत से इन चीजों को ले आया और आप लोगों को दे रहा हूं, कहीं इस कान में लिया इधर यहां सभागृह से निकले और निकाल करके चले गए और फिर वही आसक्ति का लंगर उठाया नहीं चले, तो फिर क्या हुआ? इसलिए जिन बातों को कह रहे हैं उस पर गौर करेंगे। अच्छा, अभी तो नौजवान हूं, अभी लड़की हूं, नवजीवक हूं, पीछे करूंगा। आज कर सो काल कर, काल करो सो परसों, क्या खटखट में पड़े हुए हो, समय पड़ा है बरसों, आज न कल न परसों करेंगे, बूढ़े होंगे तब करेंगे। कह रहे हैं ऐसा मत सोचो, काल करो सो आज कर, आज करो सो हम पल में परलय हो यगी बहुर करोगे कब, पल में पल जाएगा कब करेगा। अब इसे जो सुन रहे हैं आज ही जारी भजन करना आरंभ कर, प्याज लहसुन छोड़ दो, मांस मछली यदि खाते हो छोड़ दो, घर का सब काम करो, भगवान से संबंध रख करके मैं उनका दास दासी हूं, हमारे परिवार सबका पालन पोषण सब करो, किंतु सत्य गुण का अवलंबन करते हुए सत्य शुद्धि आहार शुद्धि, सत्य शुद्धि यदि भोजन में शुद्धि नहीं रहेगी तो जिस भोजन से वो खाएंगे वो रक्त होगा, रक्त से मेद मज्जा होकर के रीज होगा और उसी के द्वारा बुद्धि बनेगी। यदि सुअर का मांस खाया तो सुअर की बुद्धि होगी, कुकर का मांस खाया या बकरी का तो काम जैसा बुद्धि होगी अवश्य में वह, प्याज लहसुन खाएंगे तो वैसे ही तामसिक बुद्धि होगी, अपने भाई को और पिता को भी बिना काटे हुए नहीं छोड़ेंगे, पैसे के लिए दमड़ी के लिए सारी चमड़ी चली जाएगी। इसलिए इन बातों को सुन करके आज ही भाई भजन करना आरंभ कर दो, बहुत परिश्रम नहीं है। अरे सवेरे तुम भगवान को कह दो मैं तुम्हारा हूं और एक बात राम राम कह दो। एक लाख श्लोक का बनाया हमारे वाल्मीकि जी ने रामायण, राम के रहते हुए ही, राम के बाद में नहीं, और उसी के लिए देवता मनुष्य और राक्षस लोग तीनों लड़ने लगे, हम लेंगे हम लेंगे, जो लेगा और जिसका पालन करेगा उसका उद्धार हो जाएगा, इसलिए तीनों लड़ने लगे। भगवान शंकर दयालु वहां पर पहुंचे, बोले भाई लड़ो मत, मैं उचित रूप में इसका बंटवारा कर देता हूं। उन्होंने 1,00,000 श्लोकों को 3 भाग में विभाग करके 33,000 मनुष्यों को और राक्षसों को और असुरों को और देवताओं को बांट दिया। अब रह गया 1,000, 1,000 को उन्होंने 333 भाग में विभाग करके फिर दे दिए। अब रह गया कितना? 1 श्लोक। एक श्लोक में 4 चरण होते हैं अनुष्टुप छंदों में, वो रामायण वो जो है अनुष्टुप छंदों में है, 4 चरण होते हैं, एक एक चरण दे दिया। अब 1 चरण बच गया, 1 चरण में 8 अक्षर होते हैं और तीन आदमी हैं तो दो दो अक्षर दे दिया, तब बाकी कितने रह गए?
दो
रह गए। शंकर जी ने कहा भैया ये मैं नहीं दूंगा, ये मैं लूंगा, और यही राम नाम है। समस्त शास्त्रों का तात्पर्य है ये कृष्ण नाम राम नाम। बस कलयुग केवल नाम आधार है, यह नाम ही आधार है, कुछ नहीं होता है, यज्ञ नहीं होता है, कोई बात नहीं है, तपस्या नहीं होता है, इसे भगवान प्रसन्न नहीं होते। यह अभी तो बच्चे ने बतलाया, तपस्या से, दान से, पुण्य से, यह अभी समय रहता तो और भी बहुत बतलाता, ये दान करने का क्या फल होता है। एक आदमी ने बनाया अस्पताल लाखों करोड़ों रुपए बना करके, उसमें बड़े बड़े डॉक्टर सब नियुक्त किए गए, बड़ी चिकित्सा होने लगी, बड़ा प्रसन्न हुआ जी हमारे रुपये से ये चल रहा है, बिना पैसे की चिकित्सा हो रही है। और उसमें एक डकैत आया, उसने 50 आदमियों को मार करके आया, किंतु गोली लगने से घायल हो गया। उसने उस लोग तो जानते नहीं, वो कहीं गिरा हुआ था, एक व्यक्ति दयालु व्यक्ति ने उसको उठाया और उसी अस्पताल में भर्ती कर दिया और कुछ पैसे दे करके उसके खाने पीने की व्यवस्था कर दी। वहां पर इलाज हुआ, इलाज अच्छा होने के बाद में उसकी प्रशोध की भावना उठी, जिस व्यक्ति की गोली से जिसके घर में वो उसको गोली लगी और जिन लोगों को मारा था, अब कहा जैसे इस घर, अब इसके बाद मैं जाकर के अपने दल बल के साथ में और सबको मारूंगा। और अपना फिर दल इकट्ठा किया और कुछ दिनों के बाद में घर पर धावा करके और उसके घर वालों को 50-60 आदमियों को फिर गोली से भून करके फिर चला। अच्छा, ये जो गोली का जो भूना और जो पीछे से जो इतनी हत्याएं हुई, इसका दायित्व तो किस पर है, इसका फल कौन भोग करेगा? जिसने मारा वही नहीं, वही नहीं, जिसने अस्पताल बनाया, जिसने कि वो बचा, वो भी इसका भोग करेगा। अस्पताल बनाया ठीक है, उसका जो भला हुआ है उसका अलग से फल भोग करेगा, और ये बुरे कर्मों का फल भी उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए सभी कामों में कुछ भला और बुरा होता है, उसको भोगना पड़ता है, भगवान उसको सब कुछ पीस डालेंगे। स्कूल बना रहे हैं भाई, हमारे यहाँ 2000 लड़के, 3000 लड़के पढ़ते हैं, इसमें से 4 आदमी डकैत हुए, 4 डकैत हुए और लोगों का अच्छा हुआ, उसका तो पुण्य फल आपको मिला। आज जो 4 डकैत होकर के लोगों को मारा, उसका फल किस पर जाएगा? दूध से अभी बछड़िया गाय की, और उसके साथ में दान करते थे, जो 20-25 किलो, 30 किलो, 40 किलो दूध देती हैं। और ऐसे ही नजर ने कितना किया दान, जो तारों का गिनना सहज है, पृथ्वी के बालूकणों को गिनना भी सहज है, किंतु उनके गायों की गिनती करना बड़ा भारी मुश्किल। लाखों वर्षों तक दान किया, फल ये हुआ कि एक दिन जिस गाय को दान कर चुके थे, वो दूसरे एक दल में मिल गई जिसको वो दान करना चाहते हैं। वो ब्राह्मण कहा, ये तो मेरी गैया है, मुझे दान में दिया था। और वो कहता, जी नहीं तो ये तो महाराज ने अब मुझको दान दिया। दोनों लड़ने लगे, महाराज के पास में आए, महाराज आप उचित न्याय करके हमारी गाय दिलवा दीजिए। वो कहता, ये गाय मेरी है, ये मेरी है, और महाराज की भी हुई। राजा ने कहा, जो भाई कोई बात, लड़ने की जरूरत नहीं, हमने तो दी थी, हम इसके बदले दूसरी गाय दे देते हैं, तुम ले लो, संतुष्ट हो जाओ, तुमको भी एक गाय दे देते हैं। नहीं महाराज, हमको जो गाय दिया था वही गाय लेंगे, दूसरी गाय नहीं लेंगे। अरे इसके बाद में 100 लो, 1000 लो, 1,00,000 गाय ले लो, तभी संतुष्ट हो जाओ। नहीं महाराज, हम लोग ब्राह्मण हैं, हम वही गाय लेंगे। वो भी अपनी जीत पर अड़ गया, ये भी फल हुआ कि दोनों ने मिलकर के अभी संपात किया। गिरगिट की तरह में तो रूप बदलता है, अपने भावों को बदलता है, इसलिए या तो गिरगिट हो जाए। क्या फल हुआ उनको? जो फल गाय ज्ञान दी उसका तो अलग से फल स्वर्ग में जाए, और फिर स्वर्ग का फल भोग करने के बाद में ये बुरे कर्मों का ये जब संपात उसको भोगना पड़ेगा। और होकर के गिरगिट होकर के सौभाग्यवश वो आया द्वारका के एक कुएं में, भारी गिरगिट होकर के हजारों लाखों वर्षों तक दुख भोगता रहा। कृष्ण के बच्चे सांब और प्रद्युम्न इत्यादि सब बच्चे सब खेल रहे थे, उनको प्यास लगी, कुएं में देखा, अरे ये तो कोई जानवर है, पानी तो दिखाई नहीं पड़ता। सब लोगों ने बहुत चेष्टा की उसको निकालने के लिए, नहीं निकल सका। कृष्ण के पास में गए। अरे ये अद्भुत एक जानवर तुम्हें पड़ा है पिताजी, जरा देखिए। तो वो आए, वो तो जानते ही हैं सब कुछ, आ करके अपने पैर को नीचे लटकाया, उसके सिर पर स्पर्श कराने के साथ ही साथ एक देवता सा अत्यंत सुंदर सुपुरुष उसमें से निकला और कृष्ण की परिक्रमा करके हाथ जोड़ करके स्तव स्तुति करके जाने लगा। कृष्ण ने बच्चों को शिक्षा देने के लिए कहा, आप कौन हैं और कैसे यहां पर पड़े? तो मैं महाराज मृग हूं, मैं आज से हजारों वर्ष पहले, लाखों करोड़ों वर्ष पहले ऐसे गायों का रोज दान करता था और ऐसे ब्राह्मणों ने झगड़ा करके एक गाय के लिए हमको अभी संपात कर लिया और आज उसी के वजह से मैं गिरित इसमें पड़ा हुआ था। वो तो आपके चरणों के स्पर्श से मेरा आज उद्धार हो गया, मैं तो मानी ये कब तक ये भोग करता रहा। कृष्ण ने कहा, ये देखो, ये तुम तो भोग रहा था किंतु ये हमारा संग कैसे हो गया? अरे उस जन्म में तुमने एक भागवत की पोथी लिखवा करके किसी से और एक किसी ब्राह्मण को दिया था, उस भागवत की कथा सुनने से और पढ़ने से उसका जो फल हुआ उससे तुम हमारा संग पा गया, हमारे चरणों का स्पर्श पा गया, इसलिए तुम्हारा उद्धार। ऐसे ऐसे कर्म से बंधन में पड़ेंगे आसक्त होकर के, उससे कुछ नहीं होता, कुछ संसारिक लाभ होगा, कुछ धन जन पुत्र परिवार संपत्ति, किंतु यथार्थ का कल्याण नहीं होगा। वो होगा दिनुहरि भजन न भव यह सिद्धांत अपे। भले ही कमर के कछुए के पीठ पर केस उग जाए, भले ही आकाश में बहुत से फूल खिल जाए, चाहे भले ही बर्फ से आग पैदा हो जाए, चाहे भले ही हिम से अनल प्रगट पर हो, हिम से आग प्रगट हो सके, अंधकार बनू रही न सारा, अंधकार सूर्य को भी निगल जाए, बारी मथे बरु हो ये घृत सिकता ते बरु तेल, दिन हरि भजन न भवतरिया यह सिद्धांत। इसलिए भगवान का भजन करें, करते हैं सब कुछ करें, कोई भी आपत्ति नहीं है, सभी भगवान के दास हैं, किंतु थोड़ा सा भजन का भाव उसमें मिला करके करें। अब थोड़ी सी राम की कथा पर आ रहा हूं, आज राम की कथा का समापन करके कल से कृष्ण की थोड़ी सी कथा का रसास्वादन करा करके हम अपनी कथा को समाप्त करेंगे। अच्छा, दो मिनट कीर्तन कर। रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौटे, राज्याभिषेक हुआ, 11,000 वर्षों तक राज्य किया। 11,000 जब बीतने को थे अपनी लीला के अंतिम समय में, कुछ दिन पहले रामचंद्र जी ने अपने कुछ दूतों को प्रजा का सुख दुख देखने के लिए भेजा रात में। वे लोग घूम करके सवेरे आए और बोलने में कुछ संकोच हो रहा था। उन्होंने कहा, जिस संकोच की कोई बात नहीं है, जैसा देखा हाल वैसे बतलाना, हम प्रजाओं के पिता हैं, उनके अनुसार में हम उनका सुख दुख दूर करेंगे। एक दूत ने कहा, मैं गया और शाम को समय में अयोध्या के किसी एक मोहल्ले में गया, एक धोबी था वासर में, उसकी पत्नी कुछ विलंब से घर में आई किसी कारण से और उसने अपनी पत्नी को 1,00,000 मारा और कहा, घर से निकल जाओ, मैं राम नहीं जो रावण के यहां लंका में इतने दिनों तक रही और राम ने उसे ग्रहण कर लिया, मैं वैसा नहीं, निकल जा हमारे घर से, मैं ऐसी पत्नी को नहीं देखना चाहिए, जब चारणी जैसी घूमती रहती है। राम ने कहा ये तो बड़ी बुरी बात हुई, लोग ऐसे बातें भी करते हैं। इतने एक दूसरे दूत ने भी आज करके कुछ ऐसे कहा, जे कुछ लोग गांव के परस्पर बैठे हुए थे और एक दूसरे से ऐसे ही बातें कुछ कर रहे थे, भाई ये तो बड़ी अनीक भाई। राम ने कुछ विचार परीक्षा तो की नहीं और सीता जी को घर में रख लिया। भाई प्रभुता पाई कहां, क्या किसको मद नहीं होता, राजा की बात कौन करे। अच्छा ऐसे भी बात कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने लक्ष्मण जी को बुलाया, भैया तुम ही हमारे संकट के उबारने वाले हो, तुम्हारे वास्तविक तो हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं, सुख दुख में तुम हमारे शामिल रहते हो। कल सीता जी को ऋषि की इच्छा थी, उन्होंने हमसे कहा था कि मैं जंगल में गई थी तो ऋषियों की पत्नियों से मेरी मित्रता हो गई थी, हमारी सहेलियों जैसी, मैं इनको कुछ कपड़े और अलंकार देना चाहती हूँ और कुछ बच्चों को कुछ मिठाइयां भी देना चाहती हूँ जिनको प्यार करती थी, इसलिए मैं किसी उस ऋषि आश्रम में, विशेष करके वाल्मीकि जी के आश्रम के पास ही भारत राज का भी आश्रम है मैंने प्रयाग, वहां पर मैं जाना चाहती। तो ठीक है, इसी बहाने सीता जी को कपड़े लपटे अलंकार लेकर के और तुम नौका में चढ़ करके ले जाना और उनको ही छोड़ करके चला आना, आने के समय में उनको केवल बतलाना ये राम ने सदा के लिए आपका त्याग कर दिया है जीवन भर के लिए। हम उनको लक्ष्मण जी सवेरे लेकर के चले। बड़ी सीता जी आज खुश हैं कि आज बहुत दिनों की मेरी मुराद पूरी होगी, मैं ऋषि कन्याओं को ऋषि पत्नियों को मैं आभूषण देकर के फिर लौटाऊंगी। किंतु जब वहां पर वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर जब नौका पहुंची, लक्ष्मण जी ने कहा जी भाभी जी राम ने आपको सदा के लिए जीवन भर के लिए त्याग किया है, क्योंकि आप लंका नरेश के घर में कुछ दिनों तक रही, उन्होंने मुझे यह दुखदाई या हमको कार्य करने के लिए कहा। ये सुनते ही सीता जी बस बेहोश हो गई, पहले तो विलाप किया, कुछ देर के बाद ही मैं बेहोश हो गई और लक्ष्मण जी उसी रूप में उनके कपड़े लपटे और उनको वहां से उतार करके और लौट आए निर्मम निष्ठुर होकर के। प्रभु का आदेश पालन करने के लिए सेवकों को क्या करना पड़ता है देखिए, तब सेवक होता है, ऐसे नहीं सेवक हुआ जाता। लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा की यदि अब जन्म होगा तो अब छोटा भाई होकर के नहीं आऊंगा, अब तो बड़े भैया होकर के आऊंगा। इसलिए कृष्ण लीला में बड़े भैया होकर के आए, छोटे भैया होकर के नहीं आए। इधर में सीता जी विलाप करती रोने लगी, वाल्मीकि जी ने दूर से सुना और उन्होंने रामायण रचित दिया था, उनको तो सभी पता है, आए और सीता जी को पुत्री कह करके बड़े प्यार के साथ मिले गए अपने आश्रम में, जहां पर महिलाएं का भजन करने का था, बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं जो भजन करती थी उन्हीं के पास में एक कुटी देवी और उनको रख दिया। गर्भवती थी अभी कुछ दिनों की और वहीं पर रख दिया। कुछ दिन रहने के बाद में उनको संतना देने लगे और उनको रोज हरि कथा भगवान की लीला कथाएं सुनाने लगे और यह लवकुश का भी वहीं पर जन्म हुआ। अपने हाथों से उन दोनों का संस्कार किया, कुश का अग्रभाग पहले नीचे का भाग लव और ऊपर का कुश कहलाता है, इसलिए उसकी रक्षा की रक्षा मंत्र से, इसलिए दोनों जमज पुत्र हुए थे, इसलिए उन्होंने एक का नाम जो 10-5 मिनट पहले हुआ था उसका लव और दूसरे का नाम कुश रख, दोनों बड़े सुंदर राम के समान ही हुए। लाल प्यार के साथ में पाला गया। सीता जी का जो दुरा था तो वो तो कुछ बट गया, एक तो महाराज उनके वाल्मीकि जी के आश्रम में उनकी कथाएं सुनती, उनका लाल प्यार पिता जैसा पाती और दूसरी तरफ में बच्चों के लालन पालन में भी उनका दुरा कुछ दब गया। और राम का क्या हुआ, राजवन में रहते हुए भी दिन रात छटपटाते। उनका दुख जीवन कोई भाव करने वाला नहीं था। सीता जी से भी हम समझते हैं कि लाख गुना उनको डिगा, किंतु कहीं किससे। रात में भी नींद नहीं, कभी कभी कुछ फल जैसा खा लिया और बस सीता की चिंता करते रहते। इधर में ये लोग कुछ बड़े होने लगे। जब ये 4-5 वर्ष के हुए, उनका उपनयन संस्कार किया और उनको सामारी रामायण की ये सब सीता हरण के पहले तक सब जितना था उनको कंठस्थ कर दिया सारे, और कुछ सर्व रख दिया अंतिम वाला, उत्तरकांड वाला और लंका इत्यादि का, और सब याद कर। दोनों किशोर बालक रामचंद्र जी जैसे, बल्कि युवावस्था में और भी सुंदर, कंठ सुरीला, कोकिल को मात करने वाला, और बिना यंत्र लेकर के जटा जूट पहने हुए इधर में, और बिना लेकर के जब गाते सबका चित्त मुग्ध कर देते। एक दिन ये गाते 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 गोमती के तट पर पहुंचे। हुआ क्या, रामचंद्र जी का मन नहीं लगता। उन्होंने वाल्मीकि उनसे वशिष्ठ जी से कहा, महर्षि गुरु जी मैं कुछ यज्ञ करना चाहता, मन तो लगता नहीं अकेले घर में क्या करें, किसी से न बोलते चालते हैं, पागल जैसे उन्माद ग्रस्त रहते हैं सीता जी के विरह में। उन्होंने कहा मैं यज्ञ करना चाहता हूं। अच्छा तो यज्ञ तो कर सकते हो, तो बिना पत्नी के यज्ञ नहीं कर सकते, पत्नी सीता जी को ले आओ और यज्ञ करो, बाम बाग में रख करके यज्ञ करो। सीता जी को तो मैं नहीं ला सकता, फिर यज्ञ नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। फिर भी गुरु जी यज्ञ करना है, कोई उपाय बतलाइए। तो उपाय एक और है, तुम्हारे पिताजी की 360 रानियां थी, तुम एक और शादी कर लो, बस सहजी रूप में हो जाएगा, उसको लेकर के यज्ञ करो। ये भी असंभव, ये नहीं कर सकता है, ये हमारी प्रतिज्ञा है। और सीता के अतिरिक्त हमारे हृदय में दूसरी कोई स्त्री नहीं बच सकती, जैसे वो पतिव्रता है मैं भी वैसे ही रहूंगा। तो फिर कैसे यज्ञ, फिर गुरु जी आप सर्वज्ञ हैं और सब कुछ करने वाले हैं, फिर भी मेरा यज्ञ करने का कोई तरीका बतलाइए। अच्छा तो एक तरीका और है, स्वर्ण की सीता बनाई जाए और यज्ञ के समय में उसका पान संचार किया जाए और वो तुम्हारे बाएं तरफ में बैठी और दोनों मिलकर के यज्ञ में आहुति देकर के यज्ञ करो, ये मुझे मंजूर है। ठीक, स्वर्ण सीता बनाई गई और अपने सारे भाइयों के साथ में बंदर भाइयों को भी बुला लिया, सारे इष्ट मित्र सारी सेनाओं को बुलाया और गोमती के तट पर नैमिषारण्य में यह यज्ञ आरंभ हुआ। सवेरे और शाम को सवेरे यज्ञ होता और शाम को दोपहर में कथा का विश्राम होता और यज्ञ का, और उस समय में भगवान की तरह तरह की लीला कथाएं होती, कुछ भगवान का भजन होता और ऐसे ऐसे जैसे बीच में हमारा 10 मिनट के लिए भजन हो जाता है ऐसे हुआ करता। इसी समय में बीच में एक दिन लवकुश दोनों बालक आए, सिर पर जटाजूट और कदली के वृक्ष केले के वृक्ष के पत्तों को पहने हुए और वीणा पर गान करके, अद्भुत सुंदर अद्भुत सुरीली टान दोनों मिलकर के वीणा का वीणा की ध्वनि और इनकी ध्वनि अद्भुत, कोकिल के कंठ को भी लजाने वाले स्वर से ये वाल्मीकि का रामायण का ये गान कर रहे, नाना प्रकार के स्वरों से गाते गाते उसी जगह पहुंचे। लोगों रामचंद्र जी के सामने ले गए, उन्होंने कहा जैसे थोड़ा सा गान करो, तो उन्होंने लिखा कि ये हमारा भी चरित्र गान हो रहा है, बच्चे क्या समझे जी वही राम है और वही मेरी मैया सीता जी है। गान करने लगे, जब प्रथम सर्ग दो सर्ग तीन सर्ग जब जन्म इत्यादि लिया, विवाह का जब प्रसंग आया, बड़ा आनंद के साथ में सब लोग कौशल्या मैया रो रही हैं, कैकेयी जी रो रही हैं, सुमित्रा जी और राम की आंखें भी छल छल आई हैं, सब लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि एकदम हो पर वही लीला कर रहा है। इसके बाद में कुछ सर्ग और बोले, सीता रामचंद्र जी का वनवास इत्यादि सुनकर के सभी लोग एकदम डकर डकर करके रोने लग गए। कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं था जो ना रोए, हनुमान की तो बात एक लागू तो एकदम मुग्ध हो गए। शरीर की भी शुद्ध बुद्धि नहीं रही। राम भी रोने लगे, भरत भी रोने लग गए। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीसरे दिन अब तो सभी लोग प्रतिदिन ठीक समय पर बैठ जाते और संख्या भी लोगों की बढ़ने लगी और धीरे धीरे इनका अब आरंभ हुआ। होते 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 जबकि राम का वनवास हो चुका तो एक दिन रामचंद्र लोगों ने देखा, अरे ये बालक तो ऐसे मालूम होते हैं कि जैसे राम जैसे ही हैं, राम तो प्रौढ़ हो गए हैं किंतु ये बालक यदि राम यदि बचपन है तो ठीक ऐसा ही होते, कोई भी अंतर नहीं। कौशल्या की जोकर है जैसे यही राम का बेटा होता तो ठीक है। सभी लोग इस प्रकार से कह रहे हैं परस्पर। राम ने कहा, आज कथा समाप्त होने पर लक्ष्मण इस बच्चे को, दोनों बच्चों को सोने की थाल में सोने की अशर्थियां मोहरे भर करके ले जाओ और तरह तरह के वस्त्र रेशमी और सोने के अलंकार इत्यादि लेकर के इस बच्चे को दो। और पूछना ये इनका परिचय क्या है, इसके मैया बाप कौन है, थोड़ा सा परिचय लेना है। लक्ष्मण जी गए, पहले तो परिचय पूछा, बेटे तुम्हारा परिचय क्या है, तुम्हारी मैया का नाम और पिता का नाम क्या है। तो लव जी ने कहा, मैं सोच रहा था जी आप गंभीर व्यक्ति हैं, विद्वान आदमी हैं, आप देख रहे हैं हम जटाजूट होकर के ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारियों का माता पिता का कोई परिचय नहीं होता, शास्त्रों ने ऐसा आदेश नहीं दिया है पूछने का। ब्रह्मचारियों का पूछना है तो गुरु का नाम परिचय परिचय पूछो, जो गुरु कौन है, कहां पर आश्रम है ये पूछो। हम वाल्मीकि जी के शिष्य हैं, वही हमारे माता पिता भाई बंधु सर्वस्व हैं, बस उन्हीं के आश्रम में हम रहते हैं, उन्हीं का हमारा परिचय है, बस यही शिष्य उनके हैं। अब तो लक्ष्मण जी झेप गए, ये हमने प्रश्न ये गलत किया इससे, ये तो बहुत बुद्धिमान और विद्वान मालूम पड़ता है छोटे देखने पर भी। उन्होंने कहा, अच्छा ये सोने के भर करके रामचंद्र जी का ऐसा आदेश है कि सारे लोग बहुत प्रसन्न हुए हैं, इसलिए देना चाहते हैं आपको उपहार के रूप में, इसलिए इसको ग्रहण करो। कुछ और लोग बोले हाथ जोड़ करके, हमें इसे क्या आवश्यकता है, वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते हैं, केले के फल अमरूद के फल लगे हुए हैं, भूख लगती है हम लोग उनसे ले लेते हैं और केले के पत्ते पहन लेते हैं, इस रेशमी वस्त्रों की हमें क्या आवश्यकता है, ये हमें तनिक भी आवश्यकता नहीं है, हमको कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, बस इनकार कर दिया। सुनकर के सब लोग दंग रह गए। रामचंद्र सब लोग कहने लगे, हो न हो ये लड़के राम के ही हैं, किंतु पता कैसे लगे, लड़कों को तो विदा कर दिया, वाल्मीकि ऋषि जी को बुलाया रामचंद्र, उनकी पूजा की पैरों की और उनसे कहा, वाल्मीकि जी आप तो सर्वअंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, मालूम होता है कि मेरी सीता आपके पास में है और ये बालक कौन है, आप इसका परिचय दीजिए, क्या ये सीता जी के ही पुत्र हैं, मेरे ही पुत्र हैं। वाल्मीकि जी ने कहा, जे आप भी तो सर्वज्ञ हैं, ये आप ही के पुत्र हैं, सीता जी मेरे आश्रम में ही हैं, तो आपके आश्रम है तो कल उनको सभा में लाइए, मैं उनसे दो एक प्रश्न करूंगा और सारी सभा सुनेगी, फिर मैं उनको अंगीकार कर लूंगा, थोड़ा सा अपना कुछ परीक्षा दें बतलाएं जो वो पवित्र हैं। वाल्मीकि जी लौटे, अयोध्या वो बच्चे जब लौटे वाल्मीकि जी के आने के पहले, सीता जी उनके लिए प्रतीक्षा कर रही, देखा जी बहुत देर हो गई, तब आए दोनों बेटों को अपने कन आए बाएं गोदी में बैठा लिया, बैठाना आंख में कुछ आंसू भी छल, बेटे देर क्यों हुई, आज हम लोग एक राजा की सभा में गए थे, वहां पर हम लोग प्रवचन कर रहे थे, गान कर रहे, सभी लोग न जाने क्यों तमाम मधुर रूप से सुन रहे थे और सभी के आंखें से आंसू बरस रहे थे, मैं हमने एक बड़ी विचित्र बात देखी। क्या बेटा, देखी हमने वहां कि वहां पर एक सोने की मूर्ति बनी हुई थी, तुमने उनमें अंतर मैंने कुछ देखा ही नहीं, देखा जो तुम बोलती हो वो बोलती नहीं, बस इतना ही अंतर हमने देखा। सीता जी के आंखों से आंसू बरस गए, रोने लगी, किंतु बेटे को कैसे बतलाए। उन्होंने मन में ये सोचा, राम ने मुझे छोड़ा नहीं, हमको नहीं छोड़ा, और राजा ने रानी को किसी कारणवश तक छोड़ा है, किंतु मुझे नहीं छोड़ा है। अभी हमारे हमको भी लेकर के बाएं तरफ लेकर के यज्ञ कर रहे हैं, तो हमको कैसे छोड़ सकते हैं। बच्चे देकर के आचंबित हो गए, अपने दुपट्टों से उनकी आंखों को पोछने, मैया तो क्यों रो रही है, मैया के मैया क्या मतलब, जो वही राम है वही मैं दुर्भाग्य सीता हूं, हमें छोड़ दिया। इतने में वाल्मीकि जी पहुंचे, बोलिए बेटी राम यहां यज्ञ कर रहे हैं, तुमको बुलाया है, हमारे समझ से तुमको चलना चाहिए, जब पिता जब पति ने बुलाया है। सीता जी ने कहा, आप जो कुछ आदेश करेंगे, मैं आप ही की बेटी हूं, जो कहेंगे मैं वही करूंगी, यज्ञ बुलाया है और आप कहते हैं तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। दूसरे दिन सीता जी अपने दोनों बालकों को अपने साथ लेकर के वाल्मीकि जी के पीछे चली, सोचती चली जा रही है क्या कहेंगे क्या कहूंगी। सारी सभा पहले से आकर के लगी हुई है, घोषणा हो गई थी या सीता जी यहाँ पर सभा में आ रही हैं, बड़े धीरे धीरे पैरों से दृष्टि नीचे किए हुए घोघट कुछ निकाले हुए आ रही है, सारी सभा उनको देकर के उठ खड़ी हुई।